Hare Rama,
Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare
Hare, Hare Krishna. So Sunita aur Parveen ji ke ghar pe Muskan aur Masoom aaj sayankal ke satsang ka aage aa jaye प्रबंध किया है, इनका धन्यवाद करते हैं. और आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है. सुनीति, सुनीति का नाम से याद आता है भागवत में, द्रु महाराज की माता का नाम सुनीति है. ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ. कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ. और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप सृष्टि करो. ब्रह्मा जी ने मन से बच्चे पैदा हो जाओ, और बच्चे पैदा हो गए चार कुमार. का बेटा संसार बढ़ाओ, बोला नहीं, हम साधु बनेंगे. फिर नारद की उत्पत्ति हुई, फिर सप्तऋषि उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी सृष्टि हो नहीं रही थी. तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करना चाहिए. तब ब्रह्मा जी ने संकल्प से अपने सीधे हाथ से स्वयंभू मनु प्रकट किया, और उल्टे हाथ की तरफ से शत्रुपा का प्रकट हुआ. तो पहला स्त्री और पुरुष मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, और दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा पितामह बोलिए हमारे लिए क्या आ गया है. ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप सृष्टि करो, भगवान की ये इच्छा है. तो मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, तीन बेटियां हुई. इससे सृष्टि बाद में आगे सारी बढ़ी. तो मनु के दो जो पुत्र हुए उसमें छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद था, और बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था. और तीन बेटियों में देवहूति, आकुटि और प्रसूति. तो इन तीन बेटियों से जो संतान लड़कियां हुई और लड़के हुए, और दो बेटों से संतान हुआ, उससे ये हम सब संसार में जो हमारी उत्पत्ति हुई है वहाँ से हो रही है. और हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मानव बोलते हैं. तब हमारा नाम मानव पड़ गया. तो उत्तानपाद जो छोटा बेटा था मनु का, उसने तो राज किया. बड़ा बेटा तो नारद का शिष्य बना और सत्संग करने चला गया नारद के आश्रम में. तो उसने बोला मैं राज नहीं करूँगा. तो छोटे बेटे ने राज शुरू किया. तो उसका विवाह सुनीति के साथ हुआ, और दूसरी उसकी पत्नी थी, उसका नाम था सुरुचि. सुरुचि से एक बेटा था, उसका नाम था उत्तम. और सुनीति से एक पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव. तो एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद सिंहासन के ऊपर बैठे थे. छोटा सा ध्रुव 5 साल का पिताजी की गोद में बैठने के लिए ऊपर चढ़ने लगा. सुरुचि ने कहा तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो. तुम्हें अगर अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हारे को भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब बैठ सकते हो. इसका अर्थ ये है कि बेटा तुम राज के अधिकारी नहीं बन सकते हो, मेरा बेटा ही राजा बनेगा. वैसे नेम ये होता है बड़ी रानी के बेटे को राजा बनना होता है, लेकिन राजा सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे. सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी मनमानी करे, अपने मन से जैसे चाहे वैसे करे. लेकिन राजा सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, और राजा ने कुछ नहीं कहा. और ध्रु को बहुत कष्ट हुआ. माँ के ये वचन उसको लिए बाण से ज़्यादा, वैसे ये संसार में कहावत है कि बाण से ज़्यादा वाणी का घाव मिटता नहीं है. बाण का घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं मिटता है. इस दुनिया के अंदर में छुरी चाकू लगती है, वो तो जख्म भर जाता है, लेकिन जबान से किसी के कहे हुए शब्द कभी मिटते नहीं है. तो वाणी का घाव बाण से ज़्यादा खतरनाक है. ये शिक्षा भगवान शंकर दे रहे हैं. किसको? सती को. सती ने जब कहा कि मैं जाऊँगी, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, तो शंकर जी ने कहा आप जाओगे, आपका अपमान होगा. और वाणी का जो घाव है वो बाण से ज़्यादा खतरनाक होता है. सांप से ज़्यादा सर्पणी में विष होता है. बाण से ज़्यादा वाणी का मतलब जबान से जो शब्द कभी कुवचन कहता है आदमी, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता है। जीवन में इसलिए एक सिद्धांत है कि बोलना नहीं चाहिए, 32 बार सोचकर उसके बाद जबान से कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द दूसरे को कभी घाव करते हैं तो कभी नहीं भर सकता है, निशान कभी मिटने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और भगवद गीता में तो वाणी की तपस्या लिए लिखी है कि पहले तो सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी अगर दूसरे को दुख न दे तो बोलना चाहिए, मीठा हो तो बोलना चाहिए, सच्चे किसी का हित करे तो बोलना चाहिए, सत्य भी हो दूसरे का हित भी करे और किसी को दुख न दे तब बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। बोले पुराने जमाने में कहा था पहले तोलो फिर बोलो, तोलो का मतलब विचार करो कि इससे दूसरे को कष्ट तो नहीं होगा। तो वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना ये सबसे बड़ा और मुख्य इस जीवन में सुखी रहने का साधन है। वाचो वेगम, पहला वेग है बोलने का। आदमी कुछ भी बोलता है विचार नहीं करता है, और एक बार बोलता है केवल जबान के बोलने से बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बहुत अपमान इतना भगवान की इच्छा से हुआ होगा, लेकिन दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था द्रौपदी ने, और उसने उसको इतना बड़ा घाव उसने समझ लिया कि बाद में महाभारत का युद्ध भी हो गया। तो केवल जबान से ही दो शब्द बोले थे, भगवान तो बड़े मुस्कुराए थे क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगा कि ठीक किया इसने, मेरे को जो काम करना है अपने आप हो रहा है, तो ये तो ठीक है, लेकिन जबान से तपस्या है जबान की बहुत। हमारे घरों के अंदर हम पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, और इसलिए बहुत परिवारों के अंदर केवल जबान के शब्दों के कारण बहुत दरारें पड़ जाती हैं, बोलना बंद हो जाते हैं, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, परिवारों के बीच में समाप्त हो जाता है सब कुछ केवल जबान के घाव के कारण। तो आज सुरुचि का जो ये शब्द कहे द्रु का, खुद क्षत्रिय का पुत्र था, उसको बहुत बड़ा पीड़ा हुई, वो तो विष जैसे सांप ने काटा हो ऐसे उसको पीड़ा होने लगी और बड़ा दुखी हो गया, अपनी माँ के पास रोने लगा, माँ माँ इस तरीके से मेरे को माँ, मासी ने कहा है, सुनीत ने कहा आप कह तो ठीक रहे हैं बेटा, लेकिन महाराज तो उनकी बात मानते हैं, मैं बड़ी रानी हूँ लेकिन मेरा नहीं सुनेंगे। तो छोटा ध्रुव कहता है फिर क्या करूं। तो सुनीति का मतलब जो नीति के ऊपर चले, जो नीति का मार्ग सिखाए। सुरुचि अपनी मनमानी करती है और सुनीति नीति के ऊपर चलती है। सुनीति कहती है जब राजा से न्याय न मिले तो भगवान के पास प्रार्थना करनी चाहिए, जब दुनिया से न्याय नहीं मिलता है तो दुनिया के मालिक के पास जाना। तो बोला ध्रुव बोलता है फिर भगवान कहां मिलेगा मां। सुरुचि बोलती है बेटा भगवान हमने सुना है कि वन में मिलता है, क्योंकि राजा महाराजा ऋषि तो वन में ही जाते हैं भगवान को पाने के लिए, एकांत में वन में हिमालय में जाओगे तो भगवान मिलेगा। अब ये माँ अपने बेटे को भक्ति करने के लिए भेज रही है, इसलिए उसको सुनीति कहते हैं। उसको मालूम है कि इस संसार में भगवान की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, राजपाठ जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, इसलिए सुनीति के पुत्र ध्रुव, ध्रुव का मतलब है जो स्थाई है, जो नीति पे होगा उसका जीवन स्थायी होगा, जो मनमानी करेगा उसका जीवन तत्कालीन होगा। उत्तम का मतलब तत्काल है, तत्कालीन है, हमेशा नहीं रहेगा। तो आज सुनीति अपने बेटे को कहती है बेटा भगवान को प्राप्त करना है तो फिर जंगल में जाना पड़ेगा, वन में जाइए। 5 साल के छोटे बच्चे को माँ भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाने की आशीर्वाद और आज्ञा देती। अब उस ध्रुव का नाम आजकल भी दुनिया में गाया जाता है, जबकि भक्तों के, जब भी भगवान के भक्तों के नाम की गिनती होगी तो ध्रुव प्रहलाद का नाम पहले जबान पे आता है, चाहे आपने शास्त्र पढ़ा हो न पढ़ा हो, लेकिन भारत में जन्म लिया है तो ध्रुव प्रहलाद का नाम अभी आप कभी कोई भूल नहीं सकता है, ये सत्य है कि नहीं। तो ध्रुव की माँ 5 साल के बच्चे को भगवान को पाने के लिए जंगल में भेज रही है, ये सुनीति उसको कहते हैं जो नीति के ऊपर चलती है। सत्य कहती है कि भगवान को प्राप्त करोगे तभी आपका इच्छा इष्ट पूरा होगा, इच्छा पूरी होगी, जब राजा नहीं कर सकता है न्याय नहीं देगा तो किसके पास जाना चाहिए। तो सुनीति से यह सीखना चाहिए माताओं को कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, तो उनका जीवन अमर हो जाएगा, उनको राज भी मिलेगा, पाठ भी मिलेगा, और इस संसार के बाद भी भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान के रास्ते से रोकेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा समय के साथ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कुछ कमाएगा, राज करेगा, ज्यादा से ज्यादा राजा बनेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करोगे आप, धंधा दुकान कारोबार छोड़ के राजा बनोगे, इससे ज्यादा कुछ है क्या। राजा बनेगा वो भी तो समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन ध्रुव का पद तो आज भी, आज तक भी ध्रुव अपने स्थान के ऊपर ध्रुव का पद है, ये तो ब्रह्मा जी के जीवन तक ध्रुव रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, जब प्रलय होती है छोटी तब भी ध्रुव रहेगा। तो ये सी माता सुनीति उसको कहते हैं जो अपने बच्चों को नीति का मार्ग बताए। और नीति का मार्ग क्या है? नीति का मतलब ये है जो सत्य है उसके ऊपर चलना चाहिए, नीति का मतलब सत्य का मार्ग। और सत्य का मार्ग ये है कि इस जीवन में भगवान की आराधना के अलावा बाकी सब जीवन के अंदर समाप्त होने वाली चीजें, जब तक भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ है तब तक इस संसार में सब कुछ छूटने वाला है, कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। ये नीति की बात है, ये सत्य की बात है, और यही एक शिक्षा भारत के अलावा और कहीं मिलती नहीं है। आजकल इसका भारत में भी मिलना मुश्किल हो गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ये भी शाबाश है, आपके घर में रात को 10 बजे भी आप बैठ के थोड़ी देर कथा सुन रहे हैं, लेकिन 25-50-100 लोग भी भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शादी की पार्टी हो, बाहर नीचे घूमना फिरना हो तो हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, गाना बजाना हो तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन नीति की बात के ऊपर चलने वाले बहुत कम होते हैं। और ये है सुनीति का शिक्षा के भगवान को प्राप्त करने के लिए छोटे बालक को घर से विदा कर दिया। और दुरु भी संकल्प करके गया कि मेरी माँ ने आशीर्वाद दे दिया है तो भगवान मिलेगा ही। माँ अगर बेटे को आशीर्वाद देती है कि भगवान की भक्ति करो तो उसकी भक्ति निश्चित रूप से भगवान से मिलेगी। तो माता पिता की आशीर्वाद लेके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये भी नेम मिलता है। और माता पिता को भी विशेष रूप से, बच्चा छोटा माता के आश्रय में होता है, पिता तो आज लग तो सुबह जाते हैं काम करने, शाम को आते हैं। आजकल मर्दों के पास समय नहीं है बच्चों को टाइम देने का। अगर घर में संस्कार सिखाना है बच्चों को तो केवल माताएं सिखा सकती हैं। और माताओं का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि बच्चों को संस्कार, 5 साल घर में बच्चे रहते हैं सिर्फ, 5 साल के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए तो फिर घर में बहुत कम दिखाई देंगे। पहले 5 साल में चरित्र की शिक्षा माँ अपने बच्चों को दे सकती है, पिता से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। उसके पास समय भी नहीं है और उसको सुबह भागना है शाम को आना है, उसका काम है आपके पालन पोषण करना। घर में धर्म की शिक्षा देना माँ का पहला दायित्व है, और वो भी पहले 5 साल के अंदर। 5 साल के बाद बच्चा स्कूल जाने शुरू हो गया, शिक्षा देने का ये दिख रहा है। गुरु महाराज 5 साल में शिक्षा प्राप्त की, 5 साल के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, प्रहलाद की 5 साल के अंतर की शिक्षा है। इससे ये लगता है कि पहले जमाने में माताएं घर के अंदर बच्चों को संस्कार पहले 5 साल में दिया करती थी। तो 5 साल पहले घर में आपके अगर छोटे बच्चे जब हैं तब घर में आपके भगवान का छोटा सा मंदिर बना है, आरती होती है, दीप होता है, भगवान के लिए भोग लगता है, कीर्तन होता है, तो बच्चों के दिमाग के ऊपर ये सब संस्कार आ जाएंगे। बड़ों का सम्मान करना है, आए पिताजी तो चरण छूना है, जाते समय देखेगा वो घर में तो ही उसके अंदर संस्कार आएंगे। तो ये संस्कार, धार्मिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार माताओं को बच्चों को बचपन में देने चाहिए। घर के अंदर ऐसा वातावरण केवल माताएं ही बना सकती हैं, और माताओं को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। और कलयुग के अंदर आध्यात्मिक धर्म के किले की आखिरी दीवार केवल स्त्री है, नारी जो है ये किले की आखिरी दीवार है। अगर ये भी अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी तो फिर संस्कार और धर्म और सब कुछ लोप हो जाएगा, ये बात निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। कलयुग के अंदर, आधुनिक युग के अंदर धर्म की शिक्षा के दुर्ग की आखिरी दीवार स्त्री है। नारी अगर ठीक तरह से घर में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत चरित्र सिखाएगी तो भविष्य में बच्चे बहुत आज्ञाकारी, सेवाकारी, भक्त और काम के बनेंगे। अगर थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था कि आजकल समस्या ये हो गई है कि माताएं भी वेशभूषा में पुरुष बनने का प्रयास कर रही, ये दूसरा एक उस बेचारे ने बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, प्रोफेसर था, पढ़ाने वाला था, उसने कहा हम देखते हैं कि आजकल स्कूल कॉलेज में लड़कियां पढ़ने जाती है वो भी लड़कों जैसे कपड़े पहनने को और बाल काट के वैसा ही बनने का प्रयास करती हैं। हमें कोई आपत्ति उसमें नहीं है, लेकिन समस्या ये होगी जब बच्चे होंगे तो उनको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, दोनों बाप की तरह लगेंगे तो माँ का प्यार कौन देगा? और जब बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता है तो बच्चा बिल्कुल, उसको पहले ज़माने में हम बच्चे थे हमको पढ़ाते थे, ये तो कहने की बात नहीं, बोला पिता जिसका नहीं है उसको कहते हैं कि ये आधा उसको क्या कहते हैं यतीम हुआ। यतीम शब्द को नहीं समझ में आता, आता है आपको यतीम, आधा अनाथ हुआ और माता गई तो पूरा अनाथ हुआ, ये पुरानी कहावत होती थी। मालूम है आपको ये कहावत, सुनिए कभी, हमारी प्रचलित कहावत ये, पिता के न होने से आधा अनाथ और माता नहीं है तो पूरा अनाथ बच्चा माना जाता है, तो पूरा बना। अच्छा, तो घर के अंदर अगर वातावरण ऐसा हो गया, पिता का वस्त्र भूषा हो गया, पिता जैसा आना जाना कमाना भागना हो गया, तो बच्चे को माता के वात्सल्य प्रेम का अभाव हो जाता है और उस अभाव के कारण वो बच्चा मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, उसका मानसिक ऐसा स्थिति बिगड़ जाती है। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या आजकल बच्चों की है, और सबसे ज़्यादा बच्चों की समस्या पाश्चात्य देशों में है, जहाँ बच्चों में आत्महत्या बहुत ज़्यादा होती हो रही है आजकल, कि बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता है, तो ऐसा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से माताओं को घरों में बच्चों के शिक्षा देने का साधन तपस्या स्कर्ष करके भी करना चाहिए। हर घर के अंदर छोटा सा मंदिर भगवान का बनाना चाहिए, हर घर के अंदर सुबह शाम भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारित हों, ये इतना ही जरूरी है जितना आपके बच्चों को पोलियो का ड्राप पिलाना जरूरी है या खांसी का टीका लगाना जितना जरूरी है, उससे अधिक जरूरी है घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण होना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की मानसिक स्थिति, उनकी सोच और उनका विचार आगे चल के भविष्य में किसी बुद्धिमान व्यक्ति जैसे वो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यही सबसे उत्तम साधन है। आज सुनीति का बेटा ध्रुव माता की आशीर्वाद लेके रास्ते में निकला। जब माँ का आशीर्वाद है, दृढ़ संकल्प है, संस्कार अच्छे हैं, तो भगवान उसकी मदद करता है। और भगवान की मदद का पता कैसे लगता है? भगवान की मदद का पता लगता है, भगवान सहायता करते हैं कि साधु संत का संग देते हैं, साधु संत को भेज देते हैं, ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। आज रास्ते में जाते हुए ध्रुव को नारद जी मिल गए। नारद जी आज भी यहीं इस धरती के ऊपर घूमते रहते हैं, और जब भी कोई साधु साधक माता की आशीर्वाद लिया हुआ है, अच्छा चरित्र है, भगवान को पाना चाहता है, तो उसका मार्गदर्शन करते हैं। नारद अथवा नारद के जो भी परंपरा के अंतर्गत साधु संत हैं, तो आज नारद सामने आया और बच्चे ध्रुव को देखा और जाते हुए कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, चलो मैं उसको समझाऊंगा। नारद ने प्रणाम तक नहीं किया था। ध्रुव ने नारद को देखा, बोला मुझे भगवान पाने जा रहा हूँ, मेरी माँ ने कहा है वन में भगवान मिलेगा, अगर आप भगवान को मिलाने में मेरी सहायता कर सकते हो तो निश्चित रूप से मुझे मार्गदर्शन कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं वापस घर चलूँ, कि मैं घर वापस जाने वाला अभी नहीं हूँ, तो फिर आप अपना रास्ता लीजिए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए। अब नारद जी ने जब देखा कि इसका संकल्प दृढ़ है, साधु संत गुरु भी देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, मेरे पास आया क्यों है, ये भी साधु संत महात्मा ऐसे जो सब जाके प्रणाम तो करते हैं, लेकिन महात्मा देखता है कि आने का इसका उद्देश्य क्या है, ये भगवान को प्राप्त करने आया है तो उसको वो मार्ग देना चाहिए, और ये संसार से कुछ मुझसे लेने आया है तो ठीक है, इसको दो चला जाएगा, तो क्या काय के लिए आया है ये भी उसको देख। आज ध्रुव की परीक्षा हुई और नारद ने देखा ये तो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है, इसका संकल्प दृढ़ है और संस्कार इसके उत्तम है, तो नारद ने छोटे बालक ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र सिखा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बेटा जाओ इस मंत्र का उच्चारण करो, सामने जमुना जी का तट है, एक छोटा सा सुंदर टीला है, मधुबन है, तुम जाके वहां भगवान के इस मंत्र का आराधना करना, निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। छोटे से ध्रुव ने 5 साल ने बहुत कठिन तपस्या की, लेकिन 6 महीने में साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन किया। केवल 6 महीने में भगवान का दर्शन ध्रुव महाराज को हो गया, और भगवान के दर्शन को देखकर ध्रुव महाराज को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन आनंद भगवान ने कहा ठीक है बेटा क्या चाहिए मांग लो। आज भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव कहते मैं आया तो था पिताजी के राज को प्राप्त करने की इच्छा लेकर, मैं इसीलिए आपके पास आया था क्योंकि मेरे को पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया क्या, इसका अर्थ है पिताजी का राज मुझे मिलना चाहिए था, मैं वो लेने आया था, इच्छा तो मेरी राज प्राप्त करने की थी, लेकिन अब राजाओं के राजा आप भगवान का दर्शन हो गया है तो फिर मैं राज के लिए अब मेरे को कोई लालसा नहीं रह गई। अब मैं भक्ति करूं और इसके बदले में कुछ आपसे मांगूं, ये तो भक्ति का अपमान है। और हमारा ये हाल है, हम भक्ति का नहीं करते, केवल मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भी समझते हैं भगवान के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, 10 रुपया अगर डाला तो भगवान के पास इतनी बड़ी चिट्ठी डाल के आते हैं कि हमारे कारोबार में 25 लाख रुपये का फायदा होना चाहिए, 5 रुपये डाल के 25 लोग की चिट्ठी अंदर डाल के। हमने तो धर्म को हमने बहुत ही, क्या सिवा लिखा था उन्होंने मल्होत्रा जी ने, क्या लिखा था कि हमने धर्म को इतना हल्का कर दिया है, लिखा था सुबह मुझे दिखा रहे थे। आजकल लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? बाप बेटे को बेलता है, बेटा सीमेंट में मिट्टी मिला दी, हाँ बेटा रात मिला दी, मिर्ची में पत्थर पीस के मिला दिया, हाँ बाबा हो गया, आटे में मिलावट हो गई, हाँ बोला ठीक है अब चलो मंदिर में चलते हैं प्रसाद लेके आएंगे। तो काम ऐसे करे और फिर मंदिर में जाए, क्या भगवान अंधा है, देखता नहीं है कि तुम क्या काम करते हो? इतना भी भगवान को पता नहीं है कि तुम्हारा काम कैसा है और तुम वहाँ मांगने क्या जाते हो और काम क्या करते हो, क्या ये भगवान को दिखता नहीं है क्या? तो धर्म के नाम में, असल में धर्म का वो हमने दिखावा बना रखा है, हमारा अंदर से दिल तो पवित्र हुआ नहीं है। ये ध्रुव जैसा बच्चा 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर सकता है और यहाँ मंदिर में जाने वाले के तो 30-30 साल हो गए लेकिन उनके जीवन में एक पैसे का परिवर्तन नहीं है, वैसे ही काम पहले कर रहे हैं, ऐसे ही काला काम कर रहे हैं, फायदा क्या ये मंदिर में जाने का? मंदिर में जाए और जीवन में परिवर्तन ना आए, साधु के पास जाए और जीवन न बदले तो फिर साधु का कोई मतलब नहीं। भगवान के पास आजकल मंदिर में लोग ऐसे जाते हैं जैसे सुपर मार्केट में जाते हैं, लिस्ट देते हैं सामान की, पैसा देते हैं और सामान चाहिए, भगवान के पास भी जाते हैं कि ये आपको दान चढ़ाते हैं, ये हमारा नाम लिख लीजिए पंडित जी, ये पंखा हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, लेकिन ये हमारा काम होना चाहिए, एक यहाँ से पैसा दो और वहाँ से लिस्ट दो। तो ये जो धर्म का नाम, ध्रुव को भगवान 6 महीने में मिल सकता है, कथा में लोग जाते हैं लेकिन कथा की शिक्षा को ग्रहण करने को तैयार नहीं। बाप 30 साल से कथा सुनने जा रहा था, शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटा दुकान के बैठने के लायक भी होगा, बेटा दुकान के ऊपर बैठा था, ग्राहक आया कुछ चीज का भाव पूछा, बेटे को समझ में नहीं आया, मंदिर में चला गया, कथा सुनते हुए पिताजी को कहा, ग्राहक खड़ा है, पापा उसका क्या रेट है? बोला बेटा मैं आता हूँ, तब तक पंडित जी ने कह दिया गाय हमारी माता है, गाय को इच्छा से खिलाना चाहिए, अगर खाती हो तो देख के हाथ जोड़ना चाहिए, कभी भी गाय को मार के भगाना नहीं चाहिए। इतने 3-4 शब्द सुन लिए बच्चे ने। बच्चा वापस आया दुकान पे, बाहर बोरी रखी हुई थी चावल की, गाय आई खाने लगी, लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मैया आपने कृपा की हमारे पास आई हो। क्लास वहाँ सत्संग खत्म हुआ, बाबा आया, आते ही बाबा ने दो लाठी गाय को और 2 थप्पड़ बेटे को मारी। बोला ये क्या हो रहा है? बेटा बोलता अभी तो मंदिर में कथा में महाराज कह रहा था। बोला ये मैं 30 साल से सुन रहा हूँ मंदिर की बातें घर में थोड़ी लाने की चीज होती है तो असल में हमारा धर्म का जो 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 दिखावा धर्म का हमारा इस वक्त दुनिया में वो ऐसे है, जाते हैं धर्म का काम करने, दिखावा धर्म का करते हैं लेकिन काम क्या, भगवान को क्या ख्याल है? भगवान को दिखता नहीं, भगवान की 2 CC हैं, क्लोज सर्किट टीवी आजकल सब लोग लगाते हैं, आप दुकान में लगी होती है ना, बड़े बड़े दुकान में क्लोज सर्किट टीवी होती है, कौन आया कौन गया पता लगता, दिन के वक्त में सूरज और रात को चांद, ये 2 भगवान की CC हैं, क्लोज सर्किट टीवी है और सबका फोटो निकलता है क्या करते हो, और उसके पास टेलीविजन में सब दिखता रहता है, ये 2 बहुत बड़ी विशाल उनकी ऐसी टीवी है जिसमें सबका फोटो निकलता है, कोई नहीं बचता है। तो मत समझना कि उसको पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हर एक के कंधे के ऊपर यमराज ने चित्रगुप्त को बिठा दिया है और उसको भी आजकल JVC की आधुनिक कैमरा दी है अच्छी तरह से पूरे से पूरा फोटो लेता है, कोई भी मिस नहीं करता है उसमें शॉट, और हार्ड डिस्क भी पता नहीं 1000 GB की है कि 5000 की है, जब जीवित है तब तक का सारा रिकॉर्ड उसमें आ सकता है। तो मत समझना कि भगवान को दिखता नहीं है या पता नहीं लगता है, वो अपने हमारे हृदय को जानते हैं कि हम क्या विचार करते हैं, कहीं बाहर नहीं, वो हृदय के अंदर बैठे हैं। इसलिए हमारा जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन बच्चों में संस्कार डालना है तो अभी तक टाइम आपके पास है। और ये तपस्या समझ लो, मुस्कुराओ, टाइम हो गया, 3 के पास पहुंच गया, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, नहीं तो काम नहीं बने। वो घड़ी आ गई अपनी जगह पे, हमने कहा था हम वहाँ समाप्त कर। हरे कृष्ण, समझ रही है, सुन रही है, कुछ बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थोड़े दिन इस संसार में रहना है, लंबे से लंबा 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा तो कोई नहीं रह सकता है। तो थोड़े दिन के रहने के लिए, इतने काहे के लिए हम इधर का उधर कर रहे हैं, दिमाग अपना खराब कर रहे हैं, पाप की पोटली सर के ऊपर क्यों उठाना चाहते हैं, जबकि ये तो निश्चित है कि एक दिन हमको यहाँ से जाना है, और 100 साल से ज़्यादा तो जी नहीं सकते हैं, ये भी निश्चित है। और ये भी मालूम है हमको कि कुछ ले भी यहाँ से नहीं जा सकते, आज तक न कोई कभी ले गया है और न कोई आगे भी भविष्य में ले जा सकेगा, इस बात का भी निश्चय हमको है। इसमें आपको किसी को दो राय है क्या? यहाँ से जाना पड़ेगा, इसमें आपको किसी को ऐतराज़ है? किसी को कोई शक है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, 2080 में कौन रहेंगे हम में से? यहाँ 2080 आएगा तब हम में से किसी का नाम यहाँ रहेगा कोई? मुस्कान, क्या उम्र है तुम्हारी अभी बेटी? हाँ, 12 तो आपकी उम्र है, और 80 तक जाते जाते 72 ईयर्स और एड होंगे, 72 और 12 92 की होगी उस वक्त, आंखें अंदर गाल इधर, सुनाई देगा नहीं, मोटा मोटा चश्मा चढ़ा हुआ होगा, मुस्कान की आंख 92 तक रहेगी तो बहुत बड़ी बात है। 92 के कितने लोग आपने देखे आज तक? बहुत कम 92 तक लोग दिखते हैं। तो ये तो निश्चित है कि उस वक्त तक हम में से कोई नहीं रहेगा। 2080 में गारंटी सिर्फ एक मुस्कान की है, यहाँ और किसी की नहीं है। ये सच है कि झूठ है? और जब जाना होगा तो क्या ले जाएंगे? दुकान मकान फ्लैट क्या जाएगा? मटका कुछ तो जाएगा साथ में? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जब जाएगा कुछ नहीं और हमको भी जाना पड़ेगा, तो फिर ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए ये समझ लेना चाहिए कि जब जाना है तो हमारे साथ क्या जाएगा, वो तो धन इकट्ठा करना चाहिए ना, वो धन इकट्ठा करना चाहिए जो साथ जाएगा। कच्चे धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पक्का धन इकट्ठा करो। ये धन काचो, ये संसार का धन है, ये धन कच्चो, इसको कच्चा धन कहते हैं। पक्का धन हरि नाम, भगवान का नाम पक्का धन है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर जो मैं शिक्षा दे रहा हूं भगवत धर्म की, इसका थोड़ा सा भी अगर जीवन में आचरण कर लिया तो बड़े से बड़े भय से बच जाओगे। तो वो धर्म ही केवल हमारे साथ जाता है, हर व्यक्ति के साथ अपना संस्कार और धर्म साथ जाता है, भगवत नाम जो मुख से उच्चारण किया वो साथ जाता है, और कुछ नहीं जाता है। ध्रुव महाराज को आज भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन होने के बाद ध्रुव महाराज वापस लौटा तो पिताजी स्वागत करने के लिए चले गए। जिस पिताजी ने कुछ नहीं बोला था, माँ ने अपमान किया था, उस ध्रुव को वापस स्वागत करने के लिए पिताजी चला गया। जंगल से आते ध्रुव को देखा तो गोद में ले लिया, आंसू से उसका अभिषेक कर दिया, नहा लिया आंसू से, बेटा आओ, और ध्रुव को राजा भी बना दिया। लेकिन ध्रुव की माँ ने अपमान किया था, ध्रुव की नहीं, सुरुचि ने अपमान किया था। उसके बात में सत्य क्या था? सत्य तो ये था भगवान की आराधना करो, लेकिन पाप क्या था? भगवान के भक्ति करने के बाद भी मेरे गर्भ से जन्म लो, ये भगवान की भक्ति का अपमान था। भगवान की भक्ति भी करो फिर भी मेरे गर्भ में आओ तो ये भगवान की भक्ति का अपमान था। इसलिए सुरुचि को भी जल्दी मरना पड़ा और उसके बेटे को भी मरना पड़ा, उत्तम को भी यक्षु ने मार दिया। ध्रुव महाराज ने राज भी किया, राज किया, लेकिन भाई के मरने के ऊपर घोर युद्ध किया यक्षों से, लेकिन क्रोध भी आया भगवान को दर्शन के बाद भी गुरु को क्रोध आया, इसलिए उसका अपना दादा स्वयंभू मनु आया, उसने गुरु को कहा बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, एक आदमी ने तुम्हारे भाई को मारा, सारे कुल को क्यों नाश कर रहे हो, तुम्हारे को दया करनी चाहिए, छोटों के ऊपर दया करो, बराबर वालों के साथ मित्रता करो, बड़ों की सेवा करो, भगवान इससे प्रसन्न होते। और मन भक्त स्वयं मनु की आज्ञा मानकर गुरु ने युद्ध समाप्त कर दिया और फिर गुरु ने राजपाट छोड़ के बद्री का आश्रम जाके भगवान का भजन करना शुरू किया। गुरु ने राज तो किया लेकिन फिर राज अपने बेटे को दिया, गुरु के वंश में आगे जो महाराज हुए उसको उसने राज दिया। वैसे गुरु का बेटा उत्कल हुआ, लेकिन उत्कल तो भक्त का बेटा था, उसने राज स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन उस वंश के अंदर फिर आगे राज चला। तो गुरु महाराज जब बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे तो वैकुंठ से विमान आया, नंद सुनंद उसके चालक थे, नीचे आए, गुरु को बोला चलो भगवत धाम में तुम्हारे को लेने के लिए आए हैं। तो मृत्यु ने कहा ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरने के बाद जा सकता है कोई भगवान के धाम। तो गुरु ने मौत के सर के ऊपर पांव रखा और विमान में चढ़ा, लेकिन गुरु विमान गुरु का ऊपर चलना शुरू हुआ, गुरु ने कहा रोको विमान को, रोको, बोला क्या बात है, बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा भगवान के धाम में, मेरी माँ साथ चलनी चाहिए जिसने मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताया था, जिस माँ ने मुझे भगवान को जाने का रास्ता बताया था वो मेरे साथ जानी चाहिए तब मैं जाऊंगा। उस वक्त चालक ने कहा देखो आगे वाले विमान में तुम्हारी माँ जा रही है, तुम चलो। तो गुरु से ये सीखना चाहिए कि जिसने हमारे को भगवान की भक्ति सिखाने का केवल रास्ता भी बताया है और भगवान से कोई बुलावा आए तो बोलना मैं अकेला नहीं चलूंगा, उसके कारण मेरे को आप मिले थे इसलिए उसको भी लेकर चलो। उस जब गुरु छोटा था तो माँ ने भगवान मिलाने का सहारा बना, आज गुरु बड़ा हुआ तो माँ को भगवान से मिलाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो इस संसार के अंदर अगर बच्चों में हम संस्कार डालेंगे, बचपन में उंगली से पकड़ के मंदिर ले जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारी लाठी पकड़ लेंगे और गिरने से बचा लेंगे। अब संस्कार दोगे तो आगे आपको जब जरूरत होगी तो सहारा मिलेगा, और नहीं तो संभव नहीं है। आजकल के आधुनिक बच्चों से कुछ आशा रखो कि आगे चल के बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए घरों के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे आज इनके घर में प्रवीण जी और सुनीति के घर में सत्संग का आयोजन है, हरि कथा हरि कीर्तन हुआ है, ये हर घर में हर रोज़ होना चाहिए। अपने आप परिवार के लोग बैठ के कीर्तन करो, यही आपकी सुरक्षा का कवच है। सारा दिन काम करो नौकरी करो, लेकिन सुबह सवेल और शाम को दो टाइम भगवान के स्मरण के लिए निकालो। कोई ज़्यादा पाठ पढ़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, संस्कृत पढ़ने नहीं आया तो कोई चिंता मत करो, केवल ये 16 अक्षर का छोटा सा मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस इस एक मंत्र को समझ लो। ये बीज है, एक छोटे बीज में पूरा बरगद का पेड़ होता है, एक छोटे बीज में पूरा पीपल का पेड़ होता है, ये नाम रूपी बीज में भगवान और भगवान का धाम और सब कुछ संसार में चाहो या संसार के बाहर चाहो, जो भगवान के पास है और भगवान का है वही संसार है, वही इस नाम में समाया हुआ है। इसमें से सब कुछ भगवान और संसार सब मिलने वाला है, इसी एक नाम को जीवन में जोड़ लो और सुखी हो जाओ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मुस्कान बोलो हरे कृष्णा। हमने कहा था 33 मिनट, तो 23 मिनट हुआ, ठीक है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। आप लोगों को किसी को कुछ भी जिज्ञासा